Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna Paya Kukarma Kipai Kevala Jnana Upaya Prabhu Bhai Bhajo Shivarai Jinavani Ke Jnana Te Hota Tattva Shraddha Charanadhari Kevala Lahe Pave Pada Nirva Nemi Chanda Alhada Kar Madhava Chanda Pradhan Namo Jasa Ujjasate Jane Nija Gunatha Labdhi Sarako Payakai Karikai Kshapanasar Ho hai Pravachan Saraso Samaya Sara Avikar.
Bhagavan Mahavir ke vani mein charo hi aniyogon dwara jo updesh hame mila hai usme se hum कर्णानियोग के माध्यम से कर्मों का स्वरूप जानकर अपना स्वरूप निश्चित करने जा रहे हैं। कर्मों को जानने के लिए कर्म की थियरी नहीं सुनना है, परंतु कर्म के उदय में जो कोई बातें होती है उसमें जीव ने आज तक यही मैं हूं ऐसा मान लिया है और उसके कारण उसका अनादि से भव भ्रमण चल रहा है। यह हमें जीव को पहचानना है तो जो परवस्तुएं हैं कर्म आदि जो अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में है और उसका उदय हर समय चल रहा है और उसका वहां फल भी जीव के भावों में और संयोगों में दोनों में मिल रहा है, तो जीव के अनादि से ऐसी बुद्धि हो रही है ये संयोग ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं। उसकी बात करते हुए अभी हमने अभी तक ये देखा है, जो पॉइंट्स हमने अभी 2-3 घंटे देखे हैं उसकी बात करके हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बात देखी कि जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, किसी ने उन्हें मिलाया नहीं है। हर समय पुराने कर्मों का उदय होता है, उसके कारण यहां जीव राग मोह राग द्वेष करता है और वहां नए कर्मों का बंध होता है। पुराना कर्म है तो उदय में आएगा ही, अब वहां जो जीव उसमें उदय चलता है तो यहां जीव मोह राग द्वेष करता है, वो करना पड़ता है ये बात नहीं है, और फिर नए कर्म का बंध होता है। तो ये जो साइकिल है वो अनादि से चला रहा है, तो इसमें से छूटने का कुछ मार्ग हो सकता है या नहीं इस पर पहले विचार करते हैं। तो आज तक अनंत जीव अरिहंत बनकर मोक्ष उनका इन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, ने ये बात कर सकता है जीव। अनंतों ने जिसको किया है वह बात आसान हो सकती है, क्योंकि उन्होंने करके फिर उपदेश दिया है और उस उपदेश को हम सही मात्रा में अगर अंगीकार करते हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी मुक्त हो सकते हैं। तो यहां जो बातें हमने 8 कर्मों की देखी है, हर समय कर्म बनता है। सामान्य से हम कर्म एक कहते हैं और उसके अगर भेद देखेंगे तो घाती कर्म और अघाती कर्म दो भेद है। घाती कर्मों के नाम हमने देखे थे, आपको याद है भाई, कल थे ना आप कि आज सुबह थे,
रात को
कल थे। अच्छा, तो घाती कर्मों के नाम ये आपको पता है, अच्छा फोर है इतना तो रिमेम्बर है. हाँ बेन आप कहना. हाँ आप कहना चाहते हैं. हाँ बहुत अच्छा. हाँ
ज्ञानवर्णीय वर्णीय मोहनीय
बहुत अच्छा. ये घाती कर्म हुए और अघाती कर्म कौन बताना चाहता है. हाँ बहन आप बताएंगे.
चार है वो
पता है. बहुत अच्छा आप कहेंगे. हाँ 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 पढ़ के बताओ. हाँ
वेदनीय आयु नाम और गोत्र.
हाँ वेदनीय आयु नाम और गोत्र हमने पहले लिखे थे उस पर, परंतु अभी हमने उसको पलटा दिया ना, पेज पर लिखा था यहाँ पर. तो इस तरह से हमने घाती कर्म चार देखे और अघाती कर्म चार देखे हैं. अब हमें उसके आगे बढ़ना है. बंध भी हमने चार प्रकार के देखे थे. हाँ बोलो हिता बेन.
प्रकृति बंध.
हाँ प्रकृति बंध,
प्रदेश
बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध. देखिए नए कर्म जो कारमाण वर्गणा है वो नए वो कर्म रूप परिणमित होती है, पुराने कर्मों के साथ जुड़ जाती है, उसको कहना बंध होना. बंद होने के बाद क्या होता है, वो सत्ता में पड़े रहते हैं कितने ही काल तक, जीव को कुछ नहीं देती फल. उसके बाद क्या होता है, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो उतने कर्म परमाणु निकल जाते हैं जिसकी स्थिति पूरी होती है, ड्यूरेशन. तो जब निकल जाता है तब उसका फल मिलता है. फल क्या क्या मिलता है उसमें हमने देखे थे, आठ कर्मों की खबर पर हमने विस्तार से उसकी बात की थी. तो इसका अर्थ क्या है, ये जो चार प्रकार का बंध है उसमें जो प्रकृति बनती है, हमने अभी आठ प्रकृतियों के नाम सुने, जिस प्रकृति का बंध हुआ उसको ये प्रकृति बंध हुआ. एक समय में जितने नंबर ऑफ परमाणु आते हैं उसको कहते हैं प्रदेश बंध. जब बंध होता है तो ये निश्चित होता है कि कितने काल तक इसका उदय चलेगा. हाँ देखो ऐसा नहीं है, हम तो इतना ही अभी तो हमने स्थूल बात की. क्या बात की थी कि जब बंधा है और वो कितने काल तक रहेगा, इतनी बात की थी. अब उसमें और जरा डिटेल जाननी है तो बंद होने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ काल तक उसका उदय ही नहीं होता, उसको कहते हैं आबादाकार. उसके बाद लगातार उदय होता रहता है हर समय हर समय हर समय. एक समय में बंधे है कितने बनते हमने देखा, अनंत बनते हैं. एक समय में जितने अनंत बंधे हैं उसके बाद क्या होता है, समय वाली हमने इतना आबादा काल है मान लेते, उतने काल तक उसका उदय नहीं होता. बाद में उसका हर समय उदय चलेगा, एक समय में बंधे हुए के. इसको हम ऐसे आड़े दिखा रहे हैं, एक एक लॉट है ये परमाणु का, इसको निषेक कहते हैं. ये नीचे का वर्तमान समय और ऊपर का भविष्य का. यहां बंध हुआ है, बंधने के बाद कुछ काल तक उसके कोई परमाणु उदय रूप नहीं आएंगे, तो उतने काल में क्या होगा, पूर्व में बंधे हुए उदय में आएंगे. ये विशिष्ट समय में बंधने हुए की बात चल रही है. जैसे अभी वर्तमान में ज्ञानावरण बंधा, अधिक से अधिक कितना बंधा है मालूम है किसी को. हाँ बेन, हमने बेन आ गई अभी उत्तर देने के लिए. हाँ बोलो बोलो. हाँ ज्ञानावरण प्रकृति का अधिक से अधिक बंध. हाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागर. अब ये सागर का माप हम बाद में देखेंगे. तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो 3000 वर्ष तक इसका उदय नहीं होगा. अनंत परमाणु बंध है, उसके बाद 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. जब भी बनता है तभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें कुछ परमाणु इसमें कुछ इस तरह से. तो उदय कब से शुरू हो रहा है, 3000 वर्ष और एक समय, फिर दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, पांचवे समय, कब तक, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष. एक कोड़ी, एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं एक के ऊपर, 7 0, और कोड़ा कोड़ी में 14. कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है करोड़ गुना करोड़, और इतने वर्ष नहीं, इतने सागर वर्ष. सागर का माप मालूम है, नहीं मालूम,
बोल.
हाँ 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल का एक सागर होता है, पल्ल इज अ मेजरमेंट. 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, तो पल्ल किसको कहना, तो एक हम उसका पल्ल का माप देते हैं. एक योजन चौड़ा और लंबा ऐसा गोल डायमीटर वाला, एक योजन डायमीटर वाला ऐसा गोल खड्डा करना, और वो उतना ही वो डीप होना चाहिए. अब उसमें वो भर देना खचा खच, किससे भरना है? हाँ, उत्तम भोग भूमि है ना, तो उत्तम भोग भूमि के जो न्यू बॉर्न वो मेंढे होते हैं उसके गेटा, उसके बाल अत्यंत ऐसे कोमल होते हैं हमारे जैसे नहीं, हमारे यहाँ जो न्यू बॉर्न है बेबी उसके बालों से उसका जो बाल है उसमें हमारे यहाँ के बाल वो 512 गुना ज्यादा होते हैं जाड़े, हाँ वहां के इतने नरम कोमल होते हैं ऐसे थिन होते हैं। अब उसमें वो बाल का भी अग्रभाग ऐसा दिखाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में तो उसका टिप और उसका इतना छोटा कि दूसरा टुकड़ा ना हो गया उसको कहेंगे रोम खंड। अब उससे वो गड्ढा पूरा पूरा भर देना, उसके बाद 100 साल के बाद एक उसमें से टुकड़ा निकालना बाहर, फिर और एक 100 साल हो जाएंगे फिर दूसरा टुकड़ा निकालना, और 100 साल हो गए तो तीसरा, जब वो पूरा गड्ढा, गड्ढा ने पल्ल्य कहते उसको, उपमा दिया है उसको, उपमा दी है, तो जब पूरा गड्ढा खाली हो जाएगा तब एक पल्ल्य सुनना है। और ये तो व्यवहार पल्ल्य हुआ, इसके जितने रोमखंड है उसको असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से गुणा करना, समय समय हमने देखा था एक आवली में असंख्यात समय और एक सेकंड में हजारों आवली, तो असंख्यात करोड़ वर्षों में कितने समय हो गए, उतने समयों से गुणा करेंगे तो हो जाएगा वो अद्धापल्य उद्धार पल्य, उसको और असंख्यात वर्षों से समयों से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अद्धापल्य, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यं का होता है एक सागर, और ऐसे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने समयों में, एक समय में। हमें पता ही नहीं ना हम क्या कर रहे हैं, हर समय कितनी कमाई कर रहे हैं, और वो इतने बाद साल के बाद उदय में आएगा नहीं, अभी बांधा है, पुराना तो उदय में चल ही रहा है हर समय, परंतु अभी बांधा हुआ जाकर एडिशन हो जाएगा, जो सत्ता में पड़े उसके साथ ये भी मिल जाएंगे, तो अभी एक समय में बांधा हुआ लगातार कितने समय तक आएगा उदय में, 7000 वर्ष से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक, उसमें कितने भव हो जाएंगे, और केवल यहां इतना करके रुकता नहीं, नेक्स्ट समय में फिर बांधेगा, उसके नेक्स्ट समय में फिर बांधेगा, उसके नेक्स्ट समय में फिर बांधेगा, यानी उसके लगातार बंध चल ही रहा है, तो लगातार उदय भी हो रहे हैं, और हमारी सत्ता में सागरों के कर्म ऐसे पड़ते पड़े ही रहते हैं, और उसका उदय होता रहता है, उसका फल भोगता रहता है, उसका उदय होता रहता है, फल भोगता रहता है। तो ये जो बात ऐसी चल रही है तो ये इसको कहते हैं इतनी स्थिति बांधी, जब स्थिति कहेंगे ना 70 कोड़ा कोड़ी की बांधी, उसका अर्थ लगातार इतने सालों तक उसका उदय होने वाला है, एक समय वाला, और उसमें एडिशन होती जाएंगी अनेक समयों की। अब इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, अभी अपना जो विषय चल रहा है बंध में हमने देखा था चार प्रकार से, अभी ये हमें देखना है कि बंध क्यों होता है, कैसे होता है। बंध तो देखा है कि आयु का बंध कभी कभी होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उदय कितने कर्मों का होता है, यानी आयु को छोड़कर बंध 7 प्रकृतियों का हर समय चल रहा है। कौन से 4? घाती चारों, अघाती में से 3, आयु को छोड़कर अन्य। आयु कभी कभी बंधेगी, परंतु उदय कितने कर्मों का होता है पता है आपको? हर समय कितने कर्मों का उदय चल रहा है? 8 का। आयु का उदय चल रहा है ना, हमने तो कल देखा था मरने को फुर्सत ही नहीं है, देखा था कि नहीं देखा था? अभी वर्तमान में मनुष्य आयु चल रही है, यहाँ मरण हुआ, नेक्स्ट समय में क्या होगा? जो कोई आयु बांधी, हम देवायु देखेंगे, हम क्यों दूसरे आयु में भेजेंगे? हाँ, तो देवायु का उदय चालू हो गया, यानी वो देव बन गया विग्रह गति में भी। अभी शरीर धारण करने के लिए मान लेते किसी को 1 या 2 समय लगते हैं, फिर भी आयु देव की चालू हो गई उसकी, यानी उसके बिना आयु का वो कभी भी नहीं होगा, जब होगा तभी सिद्ध भगवान ही हो जाएगी। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक आयु का उदय रहता है, यानी आयु का उदय निरंतर है। बाकी भी अभी हम मिथ्यात्व अवस्था की बात करेंगे, कि मिथ्यात्व अवस्था में आठों ही कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है। क्योंकि हम देखें जब अरिहंत होता है तो चार कर्म तो नष्ट हो जाते तो उनका उदय मिट जाता है, इसलिए हम अभी मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे। तो ये आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है, तो ये आठ कर्मों में उसका थोड़ा हम डिवीजन करेंगे तो उसमें से छूटने का मार्ग भी है कि नहीं उसको भी देखेंगे। तो ये बंद क्यों होता है उसके पहले में पहले हम देख के फिर उसकी हम बात करेंगे कि इसके क्या पद्धति है। देखो ये जो आठ कर्म है उसमें से जो हमने घाती कर्म देखे, हमें पुण्य करना है क्या पाप करना है क्या छूटने का मार्ग क्या है उसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो पहले में पहले पुण्य क्या है पाप क्या है वो कैसे बनते हैं कर्म उसको भी देखेंगे। हमें पुण्य कर्म अच्छा लगता है ना, तो पुण्य कर्म कहते किसको है उसको भी देखेंगे, वो क्यों बनता है उसको भी देखेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। अब यहाँ कुछ लिखा है कोई पढ़ सकता है इसको, मैं तो यहाँ से नहीं देख सकती। हाँ क्या लिखा है बहन? कौन समस्त है पाप रूप? घाती कर्म। घाती कर्म क्या है? समस्त पाप रूप ही है। घाती कर्म चार है, फिर दोहराते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, ये सभी पाप प्रकृतियां हैं, इनको पाप कर्म कहते हैं, अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां कहते हैं। अब अघाती में कितनी पाप रूप है और कितनी पुण्य रूप है, तो उसमें दो डिविजन से चार है ना अघाती, तो चारों में कितनी शुभ रूप है कितनी अशुभ रूप है, यानी कितनी पुण्य रूप है कितनी पाप रूप है। तो अघाती कर्मों में पाप रूप कौन कौन सी है और पुण्य रूप कौन कौन सी है उसको देखेंगे। पहले हमने देखी थी वेदनीय, वेदनीय में साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। आयु में देवायु मनुष्यायु तिर्यंचायु ये पुण्य प्रकृति है और नरकायु ये पाप प्रकृति है। नाम कर्म की लिस्ट अभी हम नहीं देखेंगे, 93 है, परंतु उसमें से कितने ही शुभ नाम प्रकृतियां हैं और कितने ही अशुभ नाम प्रकृतियां जिसको अप्रशस्त कहते हैं। और गोत्र में उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र ये पाप प्रकृति है। तो ये कैसे और कब बनती है उसकी हमें चर्चा करनी है। देखो यहां पेज नंबर 14 निकालना है हमें। हिंदी में 14 है, यह वो कर्म का उदय वाला जो चार्ट है ना उसके पहले वाला। हाँ, आठ कर्मों में थी आयु कर्म 13 नंबर पेज 43 उसमें नहीं, नीचे
कौन सा चीज
उसके नीचे हमने अभी देखा। हाँ, 14 नंबर
सेकंड लाइन
पहला ही पैराग्राफ बीजी लाइन मिला 14 नंबर का पृष्ठ है गुजराती में, हिंदी में भी 14 है परंतु नीचे का पैराग्राफ, नीचे नीचे का पैराग्राफ देखो हम पढ़ते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि सात या आठ कर्म प्रकृति का बंध निरंतर यानी हर समय होता है। अभी देखा ना हमने उदय कितने का देखा? आठों का, और बंध सात या आठ। जब आयु का बंध होता है तो आठों ही का बंध होता है, और जिस समय आयु नहीं बन रही है उस समय सात का बंध तो निरंतर चलता है, क्योंकि आयु किसी विशिष्ट समय में बनती है। तो हर समय बनता है का अर्थ क्या है? हम शुभ भाव कर रहे स्वाध्याय या कोई दूसरा हिंसा झूठ आदि पाप कार्य कर रहा है, कर्म कितने बन रहे हैं? सात या आठ। अभी हम आठ पकड़ के चलते हैं क्योंकि आयु जो बंधेगी तो बंधेगी, नहीं बंधेगी तो भी हमको तो हमें जो प्रूव करना है उसकी बात यहां देखते हैं। तो अभी हमने देखा जीव स्वाध्याय पूजा दान आदि शुभ भाव कर रहा है तो कितने कर्म बंधेंगे? अभी हम आठ के हिसाब से करेंगे, कितने बनते हैं? आठ। और पाप करेगा तो आठ, ये नक्की हुआ ना, क्योंकि हमें और आगे उसका डिराइव करना है कुछ। तो हम जब शुभ भाव कर रहे हैं तो घाती कर्म कितने बन रहे हैं? चारों है ना, और वो क्या है? कुछ लिखा है यहाँ पर, समस्त पाप रूप ही है। जिस समय हम दयादान पूजा स्वाध्याय आदि कर रहे तप कर रहे हैं, तो घाती समस्त जो कैसे है, पाप रूप ही है। अभी जो मिथ्या दृष्टि है उसकी पहले बात करेंगे, समय दृष्टि के बाद में क्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो ये पाप रूप ही है, तो उसने इतना सारा किया उसका फायदा क्या? जो पाप कर रहा है उसको भी ज्ञानावरण दर्शन और मोहनी अंतराय बन रहे हैं, और जो दयादान आदि सब तप कर रहा है उसको भी ज्ञानावरण दर्शन और मोहनी अंतराय सब बन रहे हैं, तो उसका इतना करने का फायदा कहाँ मिला? तो कहते हाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अघाती में। तो अघाती में देखते हम जिसने वो पुण्य परिणाम किया है, शुभ भाव किया, उसको क्या फल मिलेगा? अघाती में मिलेगा। क्या क्या बंधेगा वहां लिखा है ना, साता वेदनीय बंधेगा, आयु बंधनी हो तो शुभ आयु बंधेगी, और नाम में शुभ नाम बंधेगा, और गोत्र में उच्च गोत्र बंधेगा। यानी जिसने दया दान आदि शुभ परिणाम किए है, स्वाध्याय भी हो उसमें आया, आत्मानुभव को यानी वितरकता को छोड़कर जो कोई राग भाव है शुभ भाव है उसमें क्या क्या बंधा? घाती कर्म पाप बंधा और अघाती में पुण्य बंधा। बात सही है इतनी? जिसने पाप किया उसको क्या बंधा? घाती में भी पाप बंधा और अघाती में भी पाप कर्म बंधे, असाता वेदनीय आदि आदि। तो आप कहेंगे ऐसा अन्याय क्यों? हमने तो पुण्य किया है ना, तो सारा पुण्य ही बंधना चाहिए। इतनी सारी तो पाप प्रकृतियां बंधनी बन रही है, इसकी तो नंबर है 47 प्रकृतियां हैं यहाँ पर, तो इतनी सारी पाप प्रकृतियां बन रही है। तो इसीलिए कहते हैं, मालूम है योगिंद्र देव ने कहा है कि पुण्य को तो सारा जगत अच्छा समझता, पुण्य समझता ही है, परंतु कोई विरले ही है कि पुण्य को भी पाप समझते हैं। क्यों? अरे ये पाप का बंध हो रहा है। आप कहेंगे उतना तो पुण्य बन रहा है ना, अब मुझे कहो जीव के गुणों में कौन निमित्त है? घाती के अघाती। जीव के गुणों का घात कौन कर रहा है? घाती। अघाती किस में फल देता है? संयोगों में, शरीर में, गोत्र में, आयु छोटी बड़ी उसमें। यानी पुण्य करे हम और फल मिले पुद्गल में, संयोगों में मिलता है ना, संयोग में, शरीर में, और उसमें फल मिलता है, तो जीव को क्या लगता है ये मेरे है, क्योंकि अभी मोह नहीं चल रहा है ना उसका। आघाती में से मोह जब तक है उसके, तब तक उसकी ऐसी मान्यता है कि ये मेरा है, और पुण्य के उदय में जो कुछ उसको सामग्री बाह्य मिलती है उसमें उसका और मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, और उसके पीछे वो मोह है, जब तक तब तक उसी के लिए वो रात दिन उसमें जुटा रहता है। इसलिए हमें ये देखना है। देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा, जो अभी हमने पैराग्राफ बताया 14 नंबर वाले, हमने अभी देखा था कि 7 या 8 कर्म प्रकृति का बंध निरंतर, निरंतर का अर्थ क्या है? हर समय होता है। तुम शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, आठों कर्म बनते हैं, बंध होता है, बंध से छुटकारा नहीं है। क्या कहा? शुभ भाव क्या है? कषाय है ना,
तो मंद कषाय का,
मंद कषाय का, कषाय है कि बिना वितरकता है,
मंद
कषाय, बस बहुत अच्छा, तो मंद कषाय है, तो मंद कषाय से बंद होगा कि नहीं होगा?
निश्चित
होगा। तो मंद कषाय से बंद होता है, कौन सा बंद होता है? ये तो पूरा का पूरा बनता ही है, भले अनुभाग कम बंधेगा, परंतु वो उसमें पुण्य से थोड़ा कुछ फायदा है और पाप से।
मगर ये बात समझ में नहीं आई मेरे की, अगर ये पुण्य काम हम करते हैं फिर भी मंद कषाय क्यों बनते हैं? मंद कषाय भी नहीं बनने चाहिए।
मंद कषाय है ना, कर रहा है वो, पुण्य क्या है? मंद कषाय है। तो मंद कषाय से बंद हो रहा है, क्योंकि हमने कल देखे थे 4 प्रकार के बंध है, प्रदेश और प्रकृति योग से बनते हैं, और योग तो 13वें गुण स्थान के अंत तक है, और कषाय से क्या बनता है?
स्थिति
और अनुभव। अभी मिथ्या दृष्टि है तो सभी कर्म बंध ही रहे उसके, तो मिथ्यात्व का बंध रुका ही नहीं है। तो पुण्य करने से मिथ्यात्व का बंध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हमको डिसाइड करना है। हम व्यापार धंधा करते हैं तो हिसाब लगाते ना, किसमें मुनाफा है, किसमें फायदा है, तोटा है। यहाँ तो करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। नहीं करने की बात नहीं है, पाप करेंगे तो पूरा ही पाप ही पाप हो जाएगा, ये भी और वो भी। पुण्य नहीं करने की बात ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं उसका हमें पहले हिसाब लगाना है। बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी बात पहले चलेगी। बंद हो रहा है, वो कैसा हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ थोड़ा सा अनुभाग कम बंधेगा, स्थिति कम बंधेगी, परंतु बंद है निश्चित। और ऐसा भी नहीं कि कोई जीव पुण्य करता है तो कायम तीन काल पुण्य ही करता रहेगा, इसकी लिमिट होती है। वो पुण्य करते करते फिर उसके उदय भी आएगा, उसमें जुड़ेगा भी, पाप में भी बंधेगा, एक इंद्रिय में भी चला जाएगा। वो कौन से पर्याय में कितना रहता है उस देखेंगे हम बाद में। हमारा मेन प्रयोजन हम क्या बांध रहे हैं, क्या छूट रहे इसमें से। तो पुण्य करने से ये बंध रहा है और पाप करने से भी आठों कर्म बंध रहे हैं। बंधने से छूटने का वो मार्ग नहीं है, तो मार्ग कुछ अन्य होना चाहिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अवस्था में जितना पुण्य हो सकता है उतना पुण्य इसने अनंतों बार करके छोड़ा है। अनंतों बार पाप कर्म और अनंत बार उसने पुण्य कर्म, सभी प्रकार के भाव उसने अनंत बार किए हैं। मिथ्या दृष्टि के योग्यता वाले कहा मैंने, क्योंकि सम्य दृष्टि करता ऐसे भाव भी अलग होते हैं ना, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले भाव या जो कोई मुनि योग्य भाव, वैसे भाव इसके अभी नहीं हुए हैं। मिथ्यात्व दशा में करने योग्य पुण्य और पाप के भाव उसने अनंतों बार करके छोड़े हैं, परंतु उसका भी बंध का अभाव एक बार भी नहीं हुआ, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है। पुण्य करने से सम्यक तो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ क्या कहते देखे हम, उनसे बंध ही होता है। पहले क्या कहा, तुम शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, आठों कर्मों का बंध ही होता है, बंध से छुटकारा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के शुभ भाव करने पर आठों कर्मों का बंध होता है, उनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये चार घाती कर्म तो पाप रूप ही है। उसमें 47 प्रकृति है, उसमें एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। और अघाती कर्म के पुण्य और पाप प्रकृति में से उसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है, अर्थात शुभ भाव यानी पुण्य करने पर पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है। पुण्य और पाप कैसे, अघाती कर्म तो पाप है, पाप बंधा, और घाती कर्म में घाती कर्म पाप रूप है, वो तो पाप बंधा, और अघाती कर्म में पुण्य प्रकृति बंधी, यानी शुभ भाव करने पर पुण्य प्लस पाप बंधा। ख्याल आता है भाई? हाँ, घाती कर्म पाप रूप है, पाप तो बंध ही रहा है, और फिर पुण्य भी किया ना उसने, हाँ तो पुण्य प्रकृतियां भी कुछ बंधी है, परंतु उन प्रकृतियों से जीव के गुणों का कुछ विकास नहीं होने वाला है। जीव का ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो बन रहा है उससे उसका ये मिथ्यात्व तो चल ही रहा है। उसका ज्ञानावरण कभी थोड़ा उघाड़ होगा, कभी कम होगा, परंतु उसका भी सम्यक्त्व नहीं हुआ है उसको, उसके कारण। अब आगे पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति के अशुभ भाव ने पाप करने पर उसे चार घाती कर्म जो पाप प्रकृति है और चार अघाती में से पाप प्रकृति का बंध होता है। इसका तात्पर्य यह है, पुण्य करने पर पुण्य और पाप प्रकृति का बंध होता है, और पाप करने पर पाप और पाप प्रकृति का बंध होता है। ख्याल में आई इतनी बात? इसी कारण शास्त्र में कथन आता है, पाप को पाप तो सारी दुनिया कहती है, परंतु पुण्य भी पाप है, यह बात कोई विरले पुरुष ही जानते हैं। जो जीव को बंधन में डाले वह पवित्र कैसे हो सकता है, इसको हमें अभिप्राय में लेना है। आप कहेंगे ऐसा अच्छा बताया, अभी हम पुण्य छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, पाप प्लस पाप करेंगे, और कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे, निर्बोध में जाएंगे। और एक बार एक इंद्रिय में चला जाता है जीव, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जो अनंत काल है वहां भटकना पड़ता है। हमें पता ही नहीं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। करणानुयोग के अभ्यास से कभी हम देखेंगे, उस विषय को भी देखेंगे कि मनुष्य भव की दुर्लभता कितनी है। हमने जाने ही नहीं ये दुर्लभता। देखो हमारे घर में कोई बुजुर्ग होते वो कहते ना, हम तो कितनी गरीब परिस्थिति में आए, हमारे पास कुछ नहीं था, ये हमने सारा इतना वैभव खड़ा कर दिया और तुम अभी विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ जन्मे हो, आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहते कि नहीं? हमने कुछ सुना होगा या हम किसी को कहते होंगे? वैसे ही अभी हम मनुष्य हुए हैं, पर हमें याद कहाँ है कि इस बहुपूर्ति भी हमें, हम माँ के पेट में थे, किसको किसको याद है? कहाँ से याद है? किसी को होगी पांचवे साल से, किसी को होगी तीसरे साल से, बहुत पीछे की याद हुई तो दूसरे साल की कुछ धारणा में बैठी हुई बात तो याद आए, पर हम छोटे थे कि नहीं थे? वैसे इसके पूर्व भव में थे कि नहीं थे? पूर्व भव की भी स्मृति वाले हम देखते कितने ही लोग, तो हम अभी है तो पूर्व भव में थे, उसके पूर्व में थे, उसके पूर्व में थे, परंतु ये मनुष्य भव कितना दुर्लभ है ये बात हमें पता नहीं है। तो यहां कहते हैं कि जो बंधन में डाले वह पवित्र नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर तुम यह मत कहना कि चलो अच्छा हो गया, अब हमें पुण्य करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्योंकि शास्त्र का आधा ही उपदेश सुनते हैं, पुण्य है ये, तो क्या करेंगे हम? छोड़ देंगे।
पाप की अपेक्षा से पुण्य करना चाहिए।
ऐसा उपदेश भी दिया जाता है, हम बच्चों को भी बोलते हैं कि ये ऐसा मनमोकार मंत्र पढ़ो, कुछ स्वाध्याय करो, अपने आत्मा की बातें जानो, परंतु अभिप्राय में लेना है। अभिप्राय में पहले लेना है कि पुण्य छोड़ने योग्य है। देखो हमारे घर में बेटी पैदा होती है, पैदा होते ही उस समय हम क्या निश्चित करते हैं? पराया धन है हा? तो पराया धन है तो पर को दे देते हैं क्या? रखते हैं घर में, उसकी अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते, उसको पूरा एजुकेशन वगैरह सब कुछ देते हैं ना, और यथा योग्य हो जाती है अपने को छोड़ चली जाती है। पर हमने नक्की कब किया था? जन्म हुआ तभी। यहाँ तो बच्चा हो या बच्ची हो, वो जन्म होता है तभी नक्की करते हैं ना, क्यों बेन? अच्छा है क्योंकि हम कुछ वानप्रस्थाश्रम लेने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती कुछ पोता पोती को संभालने की, वो कहते अच्छा है आप अभी धर्म के मार्ग में लग जाओ, हमारे तरफ से आपको कोई कष्ट नहीं है। क्यों? यहाँ ये अच्छे की नहीं? तो ये हम कब निश्चित करते हैं? बेटी जन्मती है तभी, अभिप्राय में लिया है, उसको छोड़ नहीं देते। ऐसे ही पुण्य है वो बंधन का कारण है, इस बात को अभी हमें नक्की करना है। पुण्य को छोड़ने की बात अभी नहीं है, अभी तो श्रद्धान में लेने की बात है। कल हमने वो मैले कपड़े की बात देखी थी, कपड़ा मैला है अभी, ये ज्ञान किया, परंतु वो छूट सकता है ये भी लिया ना, और वो छोड़ने योग्य है, इसका श्रद्धान करना कि नहीं करना? छोड़ने योग्य नहीं मानेंगे तो हम वो क्लीनिंग का प्रोसेस क्यों करेंगे? ऐसे ही अभी पुण्य है तो पुण्य को साथ में लेकर मोक्ष जाना कि नहीं जाना? तो जाना है तो कौन सा उसमें से पुण्य रखना है? आयु को लेके जाना, आपको चॉइस दिया जाएगा, कोई तो प्रकृति आप लेकर मोक्ष में जा सकते, कौन सी रखेंगे? मैंने क्या बोला? कोई प्रकृति लेकर आप मोक्ष में जा सकते ना, कर्म के सभी कर्म नाश होकर जाते हैं, पुण्य कैरी ऑन होता है कि नहीं मोक्ष में? आपको मालूम नहीं है? हाँ, आप क्या कहते हैं? पुण्य कैरी ऑन होगा तो उसको मोक्ष नहीं,
दोनों जीरो होता है।
हाँ, जीरो होता है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।
नो, यू डिड से इट यस्टरडे,
आई डिडंट से इट नलिफाइज, आई सेड हाँ वो तो नष्ट होते हैं, जैसे प्रकृति में बंधना रुक जाता है और अधिक मात्रा में खिरते हैं वगैरह वगैरह। तो हमें ये नक्की करना है कि पुण्य जो छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य का छोड़कर कहाँ जाना? तीन बातें पॉसिबल, हम शुभ भाव करें या अशुभ भाव करें या शुद्ध भाव करें। शुद्ध भाव ने आत्मा में एकाग्रता, जो शुद्ध नहीं उसको क्या कहेंगे? सुबह आपने जैन और अजैन की परिभाषा देखी थी, जो जैन नहीं उसको हमने अजैन कहा था, जो शुद्ध नहीं उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध। तो अशुद्ध के दो भेद, इसको उपयोग कहते, चारित्र गुण का जो परिणाम है ना, तो उसको कहेंगे ये शुद्ध उपयोग। और दूसरे दो क्या है? अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध के दो भेद कौन से? शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। देखो शुभ उपयोग को अशुद्ध कहेंगे तो हमें थोड़ा दुख तो लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि हम तो शुभ करने के लिए प्रेफरेंस देते हैं और शुभ भाव चलता भी है, फिर भी वो समझना अभिप्राय में क्या लेना है, श्रद्धा में, ये छोड़कर हमको इसमें जाना है। शुभ छोड़कर पाप में नहीं जाना है, शुभ छोड़कर पुण्य में जाना, शुद्ध में, सॉरी, पुण्य छोड़कर शुद्ध में जाना है। जो अभी पाप कर रहा है उसको क्या उपदेश देंगे? अरे जरा पंच परमेश्वर की पूजा करो, नमस्कार मंत्र मोड़ो, स्वाध्याय करो, इसका उपदेश दिया। किसको? इसके लिए। अब ये कर रहा है उसको क्या कहेंगे? इससे तेरा कुछ सुधरने वाला नहीं, तो ये शुभ भाव से कुछ नहीं होगा, इसको छोड़कर शुद्ध भाव में जाना। तो इसको है या है ऐसा कहेंगे हम, श्रद्धा में लेना है। शुद्ध भाव प्रकट करने पर भी ये तो सतत नहीं हो सकता, तो ये कभी कभी होगा, तो ये कभी कभी नहीं होगा तो क्या करेगा जीव? कहाँ रहेगा? इसमें रहेगा। तो उसके जो शुभ भाव की क्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी। परंतु माना क्या उसने? ये छोड़ने लायक है। कभी माना? अरे ये नहीं मानेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने के पहले, मिथ्यात्व दशा में पहले ये नक्की करना है, मुझे ये छोड़कर ये प्रकट करने योग्य है, शुद्ध भाव में ये प्रकट करना है। तो शुभ तो हो रहे ना? हाँ हो रहे। होते हुए को ये मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे तो वितराग होना है, ये उसको पहले ही निश्चित करना है। वितराग होगा जब होगा वो तेरे गुणस्थान में। निश्चित कब किया? मिथ्यात्व दशा में वो निश्चित करेगा तब उसका मिथ्यात्व छूटेगा, कम होते होते वो फिर छूट जाएगा। परंतु मिथ्या दृष्टि है नहीं, पुण्य करते रहो, मंद कषाय करते रहो और इसी से आपका बंध छूट, इससे बंध भी होगा और इससे निर्जरा भी होगी, ये बात सही है कि नहीं है? अभी शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ है,
उसे निर्जरा
नहीं होगी, बंध होगा। अब मान लेते जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, शुद्ध भाव भी प्रकट हुआ है, तो शुद्ध भाव भी प्रकट हुआ है तो शुद्ध भाव के साथ साथ ये भी है, वहां पर अभी गया नहीं है, निर्जरा तो इससे होगी, परंतु इस पर भी आरोप आएगा, इसके साथ वाला है ना। जैसे हमारे साथ शरीर है तो शरीर को भी जीव कहते हैं कि नहीं कहते? हम कहते हैं ये सजीव है, ऐसे उस पर फिर आरोप आ सकता है, परंतु उससे निर्जरा नहीं होती, उससे तो बंद ही है। जैसे अभी हम दसवें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ चल रहा है, उसमें तो वितरागता की कितनी प्रचुरता है, थोड़ा सा सूक्ष्म लोभ है, उससे बंद होगा कि नहीं होगा? वहां भी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय बन रहे हैं, ख्याल है ना? भले मोहनीय नहीं बन रहा परंतु वो तीन भी बन रहे वहां पर, तो जितनी मात्रा में कषाय है वहां उतना बंद भी होगा, ये हमको स्वीकार करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? वितराग भाव प्रकट करना चाहिए। अब तो आप तो कहते कर्मों का उदय तो चल रहा है और हर समय हम मोहराग द्वेष कर रहे हैं और उसका उदय भी चलता रहेगा, तो इसमें से छूटने का मार्ग क्या है, हम कैसे छूट सकते हैं? तो पहले में पहले ये बंद होता क्यों है उसको देखेंगे। उदय आठों कर्मों का है, तो आठों कर्मों के उदय में बंद क्यों होता है, कौन से कर्म के उदय में बंद होता है उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले में पहले कर्म का उदय क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पृष्ठ नंबर 15 पर एक चार्ट है, 15 नंबर है ना, हाँ, कर्म का उदय। कर्म के उदय में क्या क्या होता है हमने कल तो डिटेल में देखा है, अब यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। अब यहाँ कौन सी अच्छी बैंक है, हम उसको खाता खोलने जा रहे हैं, एक अपना और एक कर्म का। देखो किसी का माल अपने पास है, किसी का पैसा है, किसी के कोई गहने हैं, कोई बात नहीं, पर आप अपने पास रख सकते हैं, प्रोवाइडेड वो उसका माल है ऐसा अपने को स्वीकार करना है। और जो हमारी वस्तु वो हमारी है। अब यहाँ हम दो खाते खोलेंगे, एक कर्म का और एक अपना। जो अपनी चीज है वो अपने खाते में रखेंगे और कर्म की चीज उसके खाते में। वो भले अपने पास रहे कोई बात नहीं है, उसको अपनी मानेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। अभी हमें यहाँ देखना है, कर्म के उदय में होने वाली बातें हम कर्म के खाते में डालेंगे और अपना जो स्वरूप है, असली स्वरूप, वो अपने खाते में रखेंगे। अभी ज्ञानावरण के उदय में यहाँ क्या हो रहा है, ज्ञान की हीनता हो रही है। और जीव का स्वरूप कैसा है, जैसे सिद्ध भगवान में है। तो सिद्ध भगवान कैसे, कितना ज्ञान है उनके पास, आप कहेंगे सिद्ध भगवान के पास कितना ज्ञान है? केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान स्वरूप मेरा स्वभाव कैसा है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हर समय हो ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव ही मैं हूं, तो वो अपने खाते में रखना है। अपना जो त्रिकाली कायम रहने वाला स्वभाव है वो अपने खाते में रखना है। और ये ज्ञान की हीनता जो हो रही, अभी आपको केवल ज्ञान है क्या, अवधि ज्ञान है, मनपरे ज्ञान है, नहीं है, और अमति श्रुत ज्ञान भी अल्प है। अभी ये जो कोई हीनता हो रही है पर्याय में, कर्म के निमित्त से हो रही है, तो हम उसको बाजू में रखेंगे, अपना असली स्वभाव अपने खाते में रखेंगे। दर्शन की हीनता हो रही है, यह भी ऐसा ही, जो हीनता हो रही है वो कर्म के खाते में, और मेरा जो असली स्वरूप है वो मेरे खाते में। मोहनी के उदय में क्या हो रहा है, श्रद्धा की विपरीतता यानी मिथ्यात्व, और चारित्र की विपरीतता यानी क्या, राग और द्वेष। तो अभी हमारे जो क्रोध मान माया लोभ सब हो रहे ना, कहाँ रखना है, कर्म के खाते में, और अपने खाते में वितराग स्वभाव अपना। ये बाकी जो दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में बाधा, वीर्य वो पुरुषार्थ के आदि की जो कमी है वो कर्म के खाते में, और अपने खाते में अनंत वीर्य जो स्वभाव है वो अपने खाते में। अरिहंतों ने प्रकट किया है ना, क्या क्या प्रकट किया हमने कल देखे थे, चार बातें अरिहंत भगवान के पर्याय में जो चार बातें प्रकट हुई है, आपको याद है भाई, अरिहंत भगवान की चार बातें, चार घाती कर्म के अभाव में उन्होंने क्या क्या प्रकट किया है, कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य है ना। तो ये मेरा भी स्वभाव है, उन्होंने जो प्रकट किया है ना, स्वभाव में से प्रकट किया है, मेरा भी स्वभाव ऐसा है, वो अपने खाते में रखना। अब कर्म के उदय के उदय में जो अघाती कर्म है उसमें क्या क्या होता है देखेंगे, क्या लिखा है, संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता, अपने खाते में के पर के खाते में, कर्म के पर के। आयु, मैं तो अनादि अनंत हूँ, ये वर्तमान आयु मेरी थोड़ी वो भी आप कहेंगे हमारे खाते में कुछ तो रखो। शरीर आदि की रचना, रात दिन जिसको हम दर्पण में मिरर में देख देख कर खुश होते हैं ना वो सारा अभी कर्म के खाते में डालना पड़ेगा। हो तैयारी है ना, नहीं है तैयारी है कि नहीं? अच्छा। और उच्च या नीच गोत्र वो भी सब कर्म के खाते में चला जाएगा। अपने खाते में कुछ रहा कि नहीं रहा, क्या रहा? हाँ ये बताया ना हमने, अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि जो अपना स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव, वो कभी अपने को छोड़ के नहीं जाता है। वो क्यों नहीं जाता है वो आप सीखेंगे अभी, वो दोपहर भी थोड़ी बात उठाई थी उसकी बात आएगी अभी। तो ये अपने खाते में इसको रखना, और ये जो सारी बातें है वो कर्म के उदय की कर्म के खाते में रखना। कर्म क्यों पढ़ना इतना डिटेल में, कि ये जो बातें है वो मेरा स्वभाव नहीं है। अब ये उदय में होने वाली जो बातें हैं, इसमें बंध किससे होगा और किससे नहीं होगा उसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट है ज्ञानावरण का उदय। अब जो ज्ञानावरण का उदय है, उस ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है, ज्ञान की हीनता हो रही है। मान लेते इतना ज्ञान है पूरा अपना, इतना स्वभाव है और इतना ढक गया और इतना ही खुला है ना। अभी हमारा ज्ञान कितना है, दोपहर को बात आई थी ना वो बकेट से समुद्र को मापने लगा था, हमारा इतना है। और पूरा ज्ञान कितना है, पूरा केवल ज्ञान जितना अपना स्वभाव है, मगर ये प्रकट नहीं है कुछ, बिना अवधि ज्ञान है न मन परे ज्ञान है, ये मति शुद्ध ज्ञान भी थोड़ा है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो प्रकट है थोड़ा सा उससे बंद होता है कि ये जो ढका है पूरा उससे बंद होता है? हाँ, जो किसने कहा, आपने? हाँ, किसी से नहीं। अरे आप कहते प्रकट है उससे, हाँ आप क्या कहते?
प्रकट जो है उससे बंद होगा।
अच्छा, हम आपके पास बाद में आएंगे। इनका कहना है वो प्रकट है उससे बंद होगा, बात सही है? आपको क्या लगता है?
पर्सनली आई थिंक इफ आई हैड ऑल द नॉलेज लाइक यू आर डिफाइनिंग देन आई वुडंट बी डूइंग पाप, कोट अनकोट पाप,
कोट अनकोट पाप। हाँ, मेरा प्रश्न क्या है, अभी जो बंद हो रहा है आप पाप कर रहे हैं उसकी बात अभी नहीं ले रहे, हम मात्र ज्ञान की बात कर रहे हैं। अभी आपके पास थोड़ा जो कुछ ज्ञान है 10% कहेंगे हम इंस्टेड ऑफ 100%, तो ये 10% से बंद हो रहा है कि जो 90% अभी नहीं है पर्याय में उससे बंद हो रहा है? दोनों से अभी ये है ही नहीं ना,
है नहीं, फिर भी अंदर तो चलता है ना।
क्या चलता है?
पाप
पुण्य, वो जाएगा राग में, वो मोहनी के खाते में चला जाएगा। हमको प्रत्येक गुण की अलग अलग बात देखनी है। मेरा प्रश्न क्या है, हम जितना जान रहे हैं उससे बंद है कि नहीं जान रहे उससे बंद है?
10% जो जान रहे हैं,
जान रहे उससे बंद होगा कि नहीं? जो 10% है वो हमारा स्वभाव है क्या, विभाव है? ये स्वभाव का अंश है कि नहीं? तो स्वभाव से अगर बंद होने लगा तो हम कभी बंध से मुक्त नहीं हो सकेंगे। भाई साहब ने बताया ना, ना जो खुला है उससे बंद होता है और जो है ही नहीं उससे तो बंद होने का सवाल ही नहीं, वो है ही नहीं है। अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं है तो जो नहीं है उससे बंद होगा क्यों? ये डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। अभी जो स्वभाव है, स्वभाव से यदि बंद होने लगेगा तो हम तीन काल, स्वभाव हमने किसको कहा था, हमने 4-5 पॉइंट बताए थे आपको, फिर उस पर आते। स्वभाव तो अनादि अनंत होता है, तो हमारे पास स्वभाव जो जानना जानना स्वभाव अनादि अनंत है, तो हम बंध से मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो किसी के दूसरे के द्वारा बनाया नहीं जाता, वो स्वतः सिद्ध होता है और वो अमर्यादित होता है, लिमिटलेस होता है। हमने कल बातें देखी थी ना इसकी, तो यहां देख रहे जितना ज्ञान खुला है ना उससे बंद है आपने कहा था ना, और जो नहीं है उससे भी बंद नहीं है। तो 8 कर्मों में से एक को हमने हटा दिया, उसके उदय में नया बंध नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, दर्शनावरण में भी यही रूल है, जितना दर्शन है थोड़ा खुला उससे बंद है कि जो नहीं है उससे बंद है? तो कहते ज्ञान दर्शन दोनों आत्मा के स्वभाव है, उससे बंद नहीं हो सकता। ये दान लाभ वगैरह जो है ना, वीर्य, जैसा वीर्य एक गुण है वैसे दान लाभ भी जीव के गुण है, उसका भी थोड़ा अंश प्रकट रहता है, उससे भी बंद नहीं होगा। मोहनीय को जरा अलग रखते, उसकी बाद में करेंगे, वो राजा है ना, मोह राजा। हाँ, वो राजा की बात बाद में करेंगे। अब हम यहां देखते हैं संयोग अनुकूल या प्रतिकूल। तो अनुकूल संयोगों से बंद होता है कि प्रतिकूल संयोगों से? भाई अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ,
प्रतिकूल।
हाँ, प्रतिकूल से। हाँ, अपने अपने मत, बिल्कुल, क्योंकि हमको अलग अलग मत रखकर फिर उसके हमको बराबर उसमें देखना है, क्योंकि हम कुछ मानते हैं, यहाँ कुछ अन्य लिखा है, तो हमें कौन सी बात सही हो निर्णय करना है, यह हमारे बुद्धि के द्वारा निर्णय करेगा, वही सच्चा होगा। तो अभी हमको देखना है अनुकूल संयोग से बंद होता है कि प्रतिकूल संयोग से, या अमेरिका के संयोग से बंद होगा कि इंडिया से होगा? दोनों से होगा। अच्छा, दोनों से। आप क्या कहते भाई, आप कुछ उत्तर नहीं देना चाहते, मौन है आज? अच्छा, आप कहते बोलने से बंद होगा इसलिए हम मौन रखते हैं। आप क्या कहेंगे?
दोनों
से बंद होगा. तो दोनों से रहित कब होंगे? वेन आर यू विदाउट संयोग? संयोग तो हमेशा होगे ना, वो भले हो बुरे हो कुछ भी हो.
मोक्ष में जाएंगे तो
जाएंगे कब? बंद छुटे भी ना जाएंगे कब? मोक्ष कुछ ऐसा नहीं कि प्लेन में बैठे और चले जाओ मोक्ष. डायरेक्ट फ्लाइट ऐसी कोई नहीं होती. मोक्ष जाने के लिए तैयारी करनी है ना, तो बंध का अभाव होगा तभी तो आगे फिर निर्जरा भी होगी. हमने देखा था 5 नलों में से पानी आ रहा है, टांकी फुल है. कौन से 5 नल? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग. और नीचे से 5 नलों में उतना ही पानी बह रहा है बाहर, तो टांकी कब खाली होगी? टांकी खाली होगी उसको हम मोक्ष कहेंगे. अब ये बंद ही हो रहा है, पांचों के द्वारा बंद हो रहा है, एक भी जिसका वो नल बंद नहीं हुआ तो उसको मोक्ष कैसे हो सकता है? तो हमें निर्णय करना है. कर्म के उदय जो है, 8 कर्मों के उदय, उसमें जो साता या असाता वेदनी के उदय में, यहां जीव को संयोगों में जो अनुकूलता प्रतिकूलता जो है उससे बंद होगा कि नहीं होगा? होगा. तो आपको यहाँ ज्यादा बंद होता है कि इंडिया में जाने पर ज्यादा होता है?
मन की स्थिति के ऊपर आधारित
है. तो मन की स्थिति जाएगी मोह के खाते में. हमें इतना ही लेना है.
प्रतिकूल संयोग है तो हम द्वेष भाव में रहते हैं.
वो आप द्वेष की बात कर रहे हैं. वी डोंट वांट द कॉन्सिक्वेंस. उसके साथ दूसरे क्या है उसकी बात नहीं करनी. अच्छा, अकेला ये घर आपको बंद का कारण है कि नहीं है? कैसे बोलो?
अपना मानने से.
उसमें मान्यता मत जोड़ना. ना मान्यता जोड़नी है ना राग द्वेष जोड़ना है. उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे. तो केवली भगवान तो कितने घर जान रहे इस विश्व के सारे घर, उनको कितना बंद होना चाहिए?
अपना उपयोग नहीं जोड़ते ना उसके साथ अपना अटैचमेंट.
सभी उपयोग है परंतु अटैचमेंट नहीं है. हम मोह को अलग रखना चाहते ना. हमें क्या है कि इतना सारा ये घर है उससे बंद होगा कि नहीं होगा, ये बात हमको लेनी है. तो चक्रवर्ती को ज्यादा बंद है और हमें कम बंद है, ऐसा लेना पड़ेगा ना. कोई समय दृष्टि राजा है, अभी चक्रवर्ती की बात छोड़ो, कोई समय दृष्टि इंद्र है, उसका तो वैभव कितना है, उसको बंद भी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि संयोग से बंद हो तो इसका अर्थ क्या है? देखो, परवस्तु से अगर बंद होने लगे तो हम बंध में से कभी छूट नहीं सकते. संयोग ना अनुकूल होते हैं ना प्रतिकूल होते हैं. ये मोह जो है ना अपनी, उसमें कल्पना, अच्छा या बुरा ये हम मानते हैं और फिर उसमें राग और द्वेष करते हैं. हमने मोह को अलग रखा था, वो राजा है ना उसको अलग रखा था. उसके बिना और किस किस से बंध होता है नहीं होता उसकी यहां चर्चा चल रही है. अभी हम देखते हैं आयु. लंबी आयु हो तो बंद होता है कि छोटी आयु में बंद ज्यादा होता है? हाँ बोलो बेन.
जैसे महावीर स्वामी को पूछा था कि कैसे होता है, तो बोलते सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, जो जागता है उसके लिए लंबी आयु अच्छी है, जो सोता है या जो मोह में है उसके लिए छोटी आयु अच्छी है.
वो अच्छे बुरी का कोई सवाल नहीं है ना उसमें. देखो यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की बात ही चल रही है. सम्यक दृष्टि के लिए तो कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है. उसकी आयु कम हो, अभी मरण आ जाए और कालांतर आ जाए, उसमें कोई, क्योंकि वो तो जानता ही है कि मैं तो जीव हूं, मैं कभी मरने वाला ही नहीं हूं. सम्यक दृष्टि के तो कोई सवाल ही नहीं. यहाँ पर सम्यक दृष्टि लंबी आयु को अच्छा नहीं मानता और ना ही छोटी आयु को बुरा मानता है. उसका तो अपना अंतरंग में पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है. तो यहाँ कहते हैं देखो, ये जो हम देख रहे थे आयु, लंबी आयु अधिक बंद करती होगी और छोटी आयु कम बंद करती होगी, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर हम ऐसा माने मिथ्या दृष्टि को छोटी आयु अच्छी है, तो अपर्याप्त की आयु होती है ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे, तो कितना होता है? एक बड़ा अंतर्मूर्त है 48 मिनट वाला, उसमें लगातार अपर्याप्त 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 भव मिले तो कितने मिलते हैं मालूम है? 66,336. मर के फिर अपर्याप्त में जाए, मर के फिर अपर्याप्त, मर के फिर उसमें एकेंद्रिय के अपर्याप्त हो गए, द्विंद्रिय के, तीनद्रिय के, चतुरेन्द्रिय के, पंचेन्द्रिय, मनुष्य के भी हो जाएंगे, सब मिलकर 66,336 कितने 48 मिनट में, एक समय कम। अभी तो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता किसी को मरे तो, क्यों यहाँ कितने टाइम की बात देते हैं, है ना?
डॉक्टरों को पूछो।
हाँ, ये सब डॉक्टर है ना यहाँ बैठे हुए। तो हम क्या देख रहे थे, ये आयु से कुछ अधिक बंद होता है या कम बंद होता है ऐसी बात नहीं है, शरीर की रचना से। ये तो हमें माना, यहाँ कोई काले है, कोई गोरे है, किसको बंद जाता है? उससे बंद नहीं होता, शरीर मैं हूं ये मान्यता से होगा। हमने वो मुंह को अभी बाजू रखा है, हमें उसकी चर्चा नहीं की है। और लास्ट में कौन सा है, उच्च या नीच गोत्र, उससे भी बंध अधिक या कम नहीं होता, उससे बंध ही नहीं होता है। तो अभी हमने आठों कर्मों में से सात कर्मों को रूल आउट किया है, उसके उदय के कारण बंध नहीं हो रहा है, उदय तो है परंतु अभी उसमें जुड़ना का अर्थ क्या होता है, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, पुराने दर्शन मुनि का उदय और पुराना चारित्र मुनि का उदय। तो हमने तीन बातें देखी थी, पुराने कर्मों का उदय है और उसमें जीव यहां मिथ्यात्व और राग द्वेष कर रहा है और उसके कारण उसको नया बंध हो रहा है, कितने कर्मों का, सभी का। फिर से उदय आठों कर्मों का है, आठ कर्मों के उदय में से किसी कर्म के उदय में उसको बंध नहीं हो रहा है एक्सेप्ट मोहनीय। तो मोहनीय से क्या क्या बंध रहा है, मोहनीय से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से फिर आठों कर्म बनते हैं। इसका अर्थ क्या है, जहां मोह है, मिथ्यात्व और राग द्वेष है, अन्य कर्मों का उदय कैसा भी क्यों न हो, ये मोह के उदय में जीव मोह राग द्वेष करता है और नए आठों ही कर्म बनते हैं। ख्याल में आते, इसमें कोई प्रश्न है तो हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बहुत हेवी हो गए, थोड़ा हेवी हुआ, थोड़ा लाइट कर देंगे फिर। देखो पहले हमने देखा था, हम अभी तक पुण्य या पाप इसी में झूलते रहे। पाप करने से भी हमें आठों कर्म बनते हैं, पुण्य से भी आठों कर्म बनते हैं, यानी वो मिथ्यात्व वाला कर्म का बंध भी हो रहा है, उदय तो चल ही रहा है। इतने सारे कर्मों के उदय में इतने फल मिलते हैं, है ना, फिर भी हमें बंध क्यों होता है, मोह राग द्वेष के कारण बंध होता है। और मोह राग द्वेष में कौन से कर्म का उदय निमित्त है, तो कहते हैं मोहनीय का उदय निमित्त है। तो मोहनीय के उदय में जीव नए नए मोह राग द्वेष करता है और उसको नया नया बंध होते रहता है, यही बात अभी हमने यहाँ देखी है। अब ये सारे कर्म सूक्ष्म कैसे है और उसमें क्या क्या बातें होती है, वो बात हम कल से देखेंगे। इसमें वो आबाधा कल कैसे होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, इस निषेक रचना कैसी होती है, कर्म कैसे उदय में आते हैं, उसकी बात हम देखेंगे। क्रम से ये बात आई, ये क्या है, ये विषय कभी हुआ नहीं ना, और थोड़ा हेवी लगता है। वैसे तो ये इसके जो फर्स्ट हाफ है इस बुक का, वो कर्म की थियोरी है, और लेटर हाफ इतना इजी है कि 10 साल का बच्चा भी बहुत आसानी से समझेगा। तो पहले हम पीछे का शुरू करते हैं। जब मैंने आपके पास ये करना नियोग परिचय वाली जो यहाँ सीडी है ना, उसमें मैंने पीछे से शुरू किया है, जैसे ये पत्रांक जो 14 वाला होगा वहां से शुरू किया है, जीव समास आदि सब बातें। आप चाहते हैं हम वहां से शुरू करेंगे और फिर यहाँ आएंगे, क्यों? हाँ, उसको ले लेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना ही ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत हेवी हो रहा है डोस। हम उसको पहले शुरू करेंगे, उसमें तो हमें ऐसा लगे ना हम बहुत सारा कुछ जाने, उसमें भी ये सारे जीवों की बातें आएगी, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की भी बातें आएगी, और वो आसान होगा, वहां से शुरू करेंगे हम, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें तो ये कर्म की थियरी कहो या ये सारे प्ररूपणा कहो, इसके आधार से हम बढ़ेंगे आगे, तो वहां से शुरू करेंगे हम कल सुबह से। अभी यहीं रुकते, अपना समय हो गया, बोलो 2400 भगवान की जय।